जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र यहां विराजमान है उसमें सातवें अधिकार में जैनाभाषी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। जैनाभाषियों में भी व्यवहाराभाषी प्रकरण का भी बहुत सुंदर विवेचन है और उस व्यवहाराभाषी के अंतर्गत सम्यक चारित्र के अर्थे थति प्रवृत्ति मा अयथार्थता ये एक प्रकरण है। ये गुजराती मोक्षमा प्रकाशक में पेज नंबर 243 243 पेज पर ये प्रारंभ हुआ है। कल का प्रकरण आपको याद होगा कि सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप यानी सम्यक दर्शन के बारे में व्यवहाराभासी जीव क्या भूल करते यूं कहो कि जो ये भूल करते हैं उनको व्यवहाराभासी कहते कि जो सम्यक दर्शन तो है नहीं पर सम्यक दर्शन की पैकिंग है उसका निमित्त है उपचार से सम्यक्त कहा गया है उसी को सच्चा वास्तविक सम्यक्त मान लिया और उसमें संतुष्ट हो गए तो ये जीव व्यवहाराभासी कहलाते। इसी तरह से ज्ञान में ये जो ज्ञान की पैकिंग जिनवाणी पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना उसका प्रचार प्रसार करना उसके साधन जोड़ना जुटाना बहुत है इसका विस्तार है उसको जीव मान ले गए हमें सम्यक ज्ञान हो गया क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं हम जैन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो ये तो सम्यक है ही और इसका हमें ज्ञान है माने सम्यक ज्ञान है तो कहते हैं कि ये जीव भी पैकिंग में संतुष्ट हो गया इसलिए ये व्यवहाराभासी हो गया। ठीक है अब सम्यक चारित्र वाला प्रकरण अपन प्रारंभ करते हैं और जिस प्रकरण की शायद आप लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे कई लोगों ने पुस्तक भी पढ़ी होगी आपने पढ़ी क्रिया परिणाम अभिप्राय है अभी नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाने के पहले एक बार पढ़ लेना आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो तो सॉफ्ट मिल जाएगी हार्ड चाहिए तो हार्ड मिल जाएगी सब सब उपलब्ध है। इसलिए कहता हूं कि उसमें इसका बहुत विस्तार से वर्णन है वो ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा केवल ये 1 2 3 4 5 पांच पंक्तियों पर ही लिखी गई है लगभग 100 पेज की किताब है पांच पंक्तियों पर ऐसा है बाह्य क्रिया ऊपर तो तेने दृष्टि छे आया पैराग्राफ आया बाह्य क्रिया ऊपर तो तेने दृष्टि छे पण परिणाम सुधारवा बगाड़वानो विचार नथी जो परिणामों पण विचार थाय तो जेवो पोतानो परिणाम थतो देखे तेनाज ऊपर दृष्टि रहे छे परंतु ते परिणामों नी परंपरा विचारता अभिप्राय मा जे वासना छे तेने विचार तो नथी અને ફલ તો અભિપ્રાયમાં વાસના છે તેનું લાગે છે, તેનું વિશેષ વ્યાખ્યાન આગળ કરીશું ત્યાં તેનું સ્વરૂપ બરાબર ભાસશે. ઇન પંક્તિઓ પર અપન કો દો દિન ચર્ચા કરના હૈ. દેખિયે હેડિંગ તો યે હૈ કે સમ્યક ચારિત્ર અર્થે કેવી પ્રવૃત્તિ છે, લેકિન બતાયેંગે સમ્યક ચારિત્ર કે બારે મે ક્યા વિપરીત ભૂલ હૈ માન્યતા. તો સબસે પહેલી બાત, તીન શબ્દ ઇસમે આયે હૈ, બાહ્ય ક્રિયા, ફિર પરિણામ, ઓર પરિણામો કી પરંપરા વિચારતા અભિપ્રાયમાં જે વાસના છે તે, ઉસકો શોર્ટકટ મેં અપન અભિપ્રાય કહે સકતે. અતિ સંક્ષેપ મેં અપન એક બાર તીનો કી પરિભાષા સમજ લેવે કે ઇસમેં કિસ અર્થ મેં ઇસકા પ્રયોગ કિયા હૈ. ખાના પીના ઉઠના બેઠના ચલના બોલના યે શરીર કી ઓર વાણી કી ક્રિયા, ચાહે અશુભ હો યા શુભ હો, પૈસા કમાના કે દાન દેના, ભોજન કરના કે ઉપવાસ કરના, યે સબ બાહ્ય ક્રિયા હૈ. બાહ્ય શબ્દ લગા કે પંડિતજી ને સ્વયં ખુલાસા કર દિયા કે આત્મા કી પર્યાય કી બાત નહીં કરતે, જો બહાર સે સબકો દિખતી હૈ ઉસકી બાત કરતે, ઠીક હૈ. ફિર પરિણામ શબ્દ કા અર્થ લૌકિક ડિક્શનરી મેં તો દૂસરા હોતા હૈ, લોક મેં તો પરિણામ માને રિઝલ્ટ, પરીક્ષા પરિણામ, સમજ મેં આયા. પર યહાં પરીક્ષા પરિણામ નહીં, યહાં તો અંદર મેં શુભાશુભ ભાવ હોતા હૈ જિસકે નિમિત્ત સે બાહ્ય ક્રિયાએં હોતી. તો જો ક્રિયા મેં નિમિત્ત બનતે હૈ એસે જો જીવ કે બહિર્લક્ષી ભાવ શુભાશુભ ભાવ વો પરિણામ હૈ. થોડા ઓર ગહેરાઈ સે સોચે તો સમ્યક દર્શન વાલી બાત કો થોડા અપન ગૌણ કરેં તો જો વીતરાગી પરિણામ હૈ વો ભી પરિણામ, અનંત જ્ઞાન દર્શન સુખ વીર નિર્મલ પર્યાય ચારિત્ર કી જ્ઞાન કી શ્રદ્ધા કે લીએ અલગ શબ્દ હૈ, ઉને શ્રદ્ધા કા સ્વરૂપ બતાના હૈ ઇસલીએ ઉન્હોને ઉસકા ખાતા અલગ રખા હૈ. ફિર બાદ મેં લિખા ના તે પરિણામોની વિચાર પરંપરા વિચારતા અભિપ્રાયમાં જે વાસના છે, તો અપન કો ક્રિયા ઓર પરિણામ પર વિચાર કરના હૈ, ફિર પરિણામો કી પરંપરા પર વિચાર કરના હૈ, ઓર અભિપ્રાય મેં વાસના વો ક્યા ચીજ હૈ ઇસ પર વિચાર કરના. એ બહુ સમજ લીએ, બહુ પ્રયોજનભૂત મેટર હૈ યે આત્મહિત કે લીએ. તો પહેલે અપન ક્રિયા ઓર પરિણામ મેં થોડી તુલના કરેં તો ક્રિયા દૂસરો કો દિખતી હૈ, દૂસરો કી અપને કો દિખતી, બાહ્ય ક્રિયા હૈ ને. યે ઇતને બજે મંદિર આતે હૈ, યહાં ખડે હોતે હૈ, એમને એક થાલી યહાં રખ દી, ઉનને એસા કર દિયા, ઉનને યે સ્તુતિ બોલી, ઉનને યે નહીં બોલી, ઉનને યે કિયા, દુનિયા ભર કી બાતે. યે જીવ કો દૂસરો કી ક્રિયા દેખને મેં બહુત મજા આતી હૈ, બાહ્ય ક્રિયા હૈ. તો દૂસરો કી ક્રિયા તો દિખતી હૈ, પરિણામ નહીં દિખતા, સમજ મેં આયા. અપની અપના પરિણામ દિખને કી તો છોડો, ફીલ કરને મેં ભી આતા હૈ. ક્રોધ આયા તો ક્રોધ કા વેદન કરેગા, રાગ હુઆ તો રાગ કા વેદન કરેગા, દ્વેષ હુઆ તો દ્વેષ કા વેદન કરેગા, જાનેગા ઓર ઉસકા સુખ દુઃખ ભોગેગા. તો અપની ક્રિયા પર ભલે ઇસમે તો કહે બાહ્ય ક્રિયા પર દ્રષ્ટિ હૈ, ઉસકી ચર્ચા મેં અભી કરુંગા. ક્યું યે બાત લિખી, પહેલે ઇન દોનો કી તુલના કર લે. તો દૂસરે કી ક્રિયા દિખતી હૈ, પરિણામ નહીં દિખતા, લેકિન વો પરિણામ ઓર ક્રિયા મેં નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હૈ ના. તો માન લો કોઈ પરેશાન હો તો ઉસકે ચહેરે પે પરેશાની ઝલકતી હૈ, કોઈ ખુશ હો તો ઉસકે ચહેરે પે ખુશી ઝલકતી હૈ. તો અપન પૂછતે હૈ આજ ક્યા બાત હૈ, આજ બહુ ખુશ દિખાઈ દે રહે, આજ બડે ઉદાસ દિખાઈ દે રહે, ક્યા પરેશાની હૈ, એસા પૂછતે ભી હૈ. તો અગર પરિણામો કો ઇફેક્ટ કરે ક્રિયા કો, વો પરિણામ, પરિણામ કે નિમિત્ત સે વો ક્રિયા વૈસી હોવે, તો અનુમાન સે અપન પરિણામો કા અનુમાન કરતે. ડાયરેક્ટ ઇન્દ્રિય ગોચર નહીં હોતે દૂસરો કે પરિણામ, મતલબ વો સૂક્ષ્મ હૈ, है। एक और बात, क्रिया और परिणाम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस वे में क्रिया होगी वैसे ही भाव होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिया, क्योंकि क्रिया स्थूल होती है, वो जल्दी चेंज नहीं होती, और परिणाम तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप पता ही नहीं चलता कहां से कहां पहुंच जाते। एक घंटे अपनी क्रिया तो एक सी रहेगी, हमारी बोलने की और आपकी सुनने की। हमारे परिणाम तो नहीं भागेंगे, परिणाम भाग जाए तो बोलने में गड़बड़ हो जाएगी सर, फिर कुछ का कुछ बोल जाएंगे। तो बोलने वाले को तो सावधान रहना पड़ता है, सुनने वाले को खुली छूट है। बस प्रेजेंट बॉडी, बॉडी से प्रेजेंट रहना, फिर परिणाम चाहे घर में जाए, चाहे दुकान में जाए, चाहे राग द्वेष में जाए, चाहे सोनगढ़ चला जाए, चाहे ऑफिस में चला जाए, कहीं भी चला जाए, उस पर कंट्रोल नहीं है। अभी ये चलता था निर्विचिकित्सा अंग का वर्णन, तो गुरुदेव बोले तेरी मान्यता से कोई बदलने वाला है बाहर की चीज? उदय के अनुसार जो शरीर में रोग आएगा वो तेरी मान्यता से बदलने वाला है? तो शरीर का रोग नहीं बदल सकता, और अंदर के परिणाम भी कर्म के उदय का ही फल है, तो वो भी नहीं बदल सकता, वो भी वो समय का सत है ऐसा। तो ऐसा भी बहुत होता है कि क्रिया होती है कुछ और परिणाम होते हैं कुछ। अरे सुबह के ही काल में नहीं कि पूजा कर रहे हैं और परिणाम घर पे चले गए, ऐसा नहीं। अशुभ में भी ऐसा होता है। मान लो आप भोजन कर रहे हैं तो आधा घंटे अगर आपको भोजन करने में लगता है तो कोई जरूरी नहीं है आधा घंटे परिणाम भोजन में ही लगे रहें। तो वो भी विचार जो है मन के, वो ऑफिस में, व्यवस्था में, इसमें, उसमें, दुनिया भर में जो भी काम का बोझा अपने माथे है, तत्संबंधी विचार उसके चलते ही रहेंगे। क्रिया होगी भोजन की और परिणाम जो होता है सो होने लायक है। इसके लिए मैंने तो अपने अनुभव से पहले ये बात उदाहरण दिया करता था। जैसे पूजा करने आए तो बड़ा सुंदर मानस बना करके, और मैं तो पहले से प्लानिंग कर लेता कि आज ये वाली पूजा करना है, तो एक दिन पहले ही उसका रस बनने लगेगा, आज सिद्ध पूजा करना है युगल जी वाली, आज अमुक पूजा करना है ऐसा। और शुरुआत की अपन ने तो स्थापना के छंद तक तो परिणाम उसमें जुड़े रहेंगे। और होता क्या है कि वो जवान को याद रहती है, ये याद रखना बच्चों के लिए अच्छा है, बड़ों के लिए खतरनाक, समझ में आया? अपेक्षा समझना, याद रहती है तो हम किताब देखते ही नहीं। ये तो अपने यहां की पद्धति है कि पुस्तक सामने रहने ही रहना, याद हो तो भी। तो याद है तो मुख से पाठ कर रहे हैं, और थाली में भी अपने हाथों को भी प्रैक्टिस हो जाती, कहां पुष्प रखा है, कहां अक्षत रखा है, कहां चंदन रखा है, कहां क्या रखा है, तो उसको भी आदत हो जाती है। अब पूजा की जो समझ लो धारा चालू हुई है, और यहां तो सामूहिक बोलते हैं तो अपन चुप भी रहो तो चलेगा, कौन जानता कि तुम बोल रहे कि नहीं बोल रहे। और मान लो बोल भी रहे हैं तो उपयोग तो बाजार में घूम रहा है, उपयोग तो बाहर में घूम रहा है, और पूरी पूजा हो गई, और जब अंतिम छंद आया, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, तो वापस लौट के आए, अरे यार पूजा तो हो ही गई, हमको तो पता ही नहीं चला कैसे हो गई। ये है भाई क्रिया व परिणाम का। ये अरे यही टॉपिक बहुत समझने लायक है, अभिप्राय की बात तो कल आएगी। आज तो क्रिया व परिणाम की बात ही करना है, तो समझने लायक बात है। तो परिणाम कुछ होते हैं, क्रिया कुछ होती। अभी इसमें आया कि बाह्य क्रिया ऊपर तो दृष्टि छे, इसका क्या मतलब, कौन सी क्रिया की बात है? कोई इसमें क्वेश्चन पेपर बनावे इसका, कि इसमें कौन सी क्रिया की बात है, क्योंकि ये प्रकरण सम्यक चारित्र अर्थे थति प्रवृत्ति मा अयथार्थता, चारित्र वाला प्रकरण है। तो सम्यक चारित्र की बाह्य क्रिया कौन सी होगी? अणुव्रत और महाव्रत की, वही चारित्र की क्रिया। पांच महाव्रत, पांच और पांच समिति, तीन गुप्ती, ये 13 प्रकार का व्यवहार चारित्र मुनियों का कहलाता है, और श्रावकों के 12 व्रत, समझ में आया, अथवा 11 प्रतिमा, तो ये सब श्रावकों की बाह्य क्रिया है। तो यहां पर उस बाह्य क्रिया की बात है, धंधा पानी की, विषय भोग की, अशुभ क्रिया की बात नहीं है, क्योंकि चारित्र के लिए तो अशुभ क्रियाओं का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किया जाता है, समझ में आया, और शुभ क्रियाओं की प्रतिज्ञा ली जाती व्यवहार में, चारित्र के मामले में ना। इसलिए ये व्रतादि की क्रिया की बात है। तो जीव की क्या टेव है अनादि काल से कि क्रिया को मेंटेन करता है, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, माने जो नियम लिया है, जो प्रतिज्ञा की है, उसमें किसी भी प्रकार की खलल नहीं आवे, कमजोरी नहीं आवे, प्रतिज्ञा भंग नहीं हो। लेकिन उस प्रिया, क्योंकि अंदर में वैसी वितरागता तो है नहीं, वैसी विशुद्धि तो है नहीं, तो आकुलता तो होगी, तो परिणाम बिगड़ेंगे, तो हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं इसका विचार नहीं करता। वे सोचता है कि क्रिया हो गई, काम हो गया, चारित्र हो गया, उपवास हो गया, व्रत हो गया, दान हो गया, ये सब हो गया है, परिणाम उसके अनुकूल है कि नहीं है इसका विचार नहीं करता। शास्त्रों में एक घटना आती है, आप लोगों ने सुनी होगी, वो महावीर अष्टक में उल्लेख आता है कि वो मेंढक जो है महावीर भगवान के दर्शन करने के लिए जाता था। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरई है क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सदभक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु न। ये भी कविवर भागचंद जी का भजन है, ए महावीर अष्टक। और ये सांची तो गंगा वाली जो जिनवाणी स्तुति है ये भी उन्हीं की है। ये महावीर अष्टक के एक छंद का अनुवाद है, समझ लो, सांची तो गंगा यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला। तो उसमें आया, हे भगवान, आपकी पूजा के भाव से एक मेंढक क्षण भर में देव हो गया है, और सैनिक राजा बाद में पहुंचे, वो पहले पहुंच गया समूह शरण में देव होकर के। आपको मालूम वो मेंढक कौन था पहले? वो एक सेठ था और वो सेठ था और उसकी प्रतिज्ञा थी, शाम को सामायिक में बैठा और उसने कहा कि जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। अब प्रतिज्ञा तो ले ली, नियम कर लिया, संकल्प कर लिया। अब जब दीपक बुझने लगा, सेठानी ने सोचा, यार अंधेरा हो रहा है, इनका मन बड़ा सामायिक में लगा है, उसने और तेल डाल दिया। हाँ, तो शास्त्रों में है घटना ये। अब उसका परिणाम, प्यास लगी है, पानी, मर जाऊंगा लेकिन पानी नहीं पीऊंगा, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन प्यास लगी है तो पानी हाँ और पानी ना, ना में भी पानी और हाँ में भी पानी, पानी चाहिए। अरे ऐसा उसका बड़ा प्रणांत वैसा हो गया और वो जाके मेंढक हुआ। वही मेंढक की बात आती है। मैं एक चित्र सोचता हूं कि फिर समाज के ऊपर या फैमिली वालों के ऊपर सेठ जी का क्या रिएक्शन हुआ होगा। सब लोगों ने कितनी गीत गा, हा हा कैसे भाग्यशाली हैं, देखो सामायिक करते करते मरण हुआ। कभी कभी एक दो बार ऐसी घटना सुनी, कोई आदमी समय शिखर की वंदना के लिए गए और फिर उधर ऊपर पांचवी टोंक पर पहुंच गए, अब थके मांदे और फिर हार्ट की प्रॉब्लम भी, ये वो सब बहुत प्रॉब्लम थी। उनने सोचा कि हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी हवा है, थोड़ा यहाँ रेस्ट कर लें फिर अंदर जाएंगे। और भी दूसरी बातें मुझे वो कट करनी है, और उसी समय उसका हार्ट फेल हो गया। अब उसके परिणाम तो ऐसे थे, कितनी अच्छी हवा है, वो आयु का बंद हो गया, वो हवा में जाके पैदा हो गया। कितनी अच्छी हरियाली है, तो वो हरियाली में जाके पैदा हो गया, झाड़ में जाके। ऐसा हो सकता है? कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। वचनामृत में आता है, कुदरत परिणामोनी साथे बंदाए लीचे। तो अब उसका तो जो हुआ सो हुआ, अब घर वाले तो महान जलसा करें, महोत्सव करें, उसका वो फंक्शन मनावें और लोग तारीफ करें शोक सभा में, भगवान सबको ऐसी मौत दे दे। यानी दुनिया जो है क्रिया से प्रभावित होती है, बंद परिणामों से होता है। फिर से सुनना, जगत पे जो प्रभाव पड़ता है वो बाह्य क्रिया के से का पड़ता है, लेकिन बंद क्रिया से नहीं होता। बंद काय से होता है, परण बंद समय जीव चेतिये उदये सा संताप है। बंद के समय चेतो, बंद परिणामों से होता है। इसमें एक और मैसेज है, दूसरों का मूल्यांकन क्रिया से ही करना और उससे ही संभव है। परिणाम का आपको क्या खबर। यहां एक समझ लो प्रोजेक्ट रखा कि एक बढ़िया विधान होना है, बढ़िया शिविर होना है, इसमें 5 लाख का खर्चा है। एक आदमी बोला आप चिंता मत करो, किसी से नहीं मांगो, मेरी तरफ से करा दे। अब हम जैसे आदमी खुश हो गए, यार अच्छे भाव हैं, बढ़िया हैं, कैसे हैं, हैं देखो कैसे अच्छे परिणाम। अब दूसरा आदमी, मैंने समझ लो थोड़ी उसकी तारीफ कर दी, तो दूसरा आदमी, पंडित जी आप समझते नहीं हो, इसको 2 नंबर का पैसा ठिकाने लगाना है, हैं कि इसको समाज में प्रेसिडेंट बनना है, कि इसको चुनाव में खड़ा होना है। वो उसके परिणाम बताता है, अभिप्राय बताता है। तो मैं उससे कहता हूं, यार उसके जैसे परिणाम होंगे वैसा वो फल भोगेगा। समाज को तो पैसा मिलने दो ना, तुमको उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये एक देश लागू करना समझ में आया। लेकिन वस्तु स्थिति ये है, हम किसी के मान लो उस समय उसके अच्छे भाव भी हैं और 2 घंटे बाद बदल गए, यार मैंने तो भावुकता में कह दिया था। समझ में आया ना। घर वाले कहने लगे ऐसा कैसे तुमसे, हमसे भाई कहने लगे हमसे बिना पूछे कैसे कह दिया। तो परिणाम तो क्षण क्षण जो है वो कार्डियोलॉजी निकालते ना, वैसे ऐसे ऐसे होते रहते हैं, वैसे होते रहते हैं। समझ में आया। लेकिन क्रिया तो जो हो गई सो हो गई। तो समाज की धारा तभी व्यवस्थित रहती है कि अच्छी क्रियाओं की प्रशंसा करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसका समझ लो ये सम्मान सम्मान करना और हीन क्रियाओं की निंदा करना, इस फार्मूले पर ही समाज चलती। आप किसी के परिणाम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। टोटल मुनि तो लिखा है कि समूह शरण में कोई मुनि 11वें गुण स्थान से गिर के पहले में आ जावे तो कोई क्या कर लेगा, किसी को क्या पता। और मान लो गंधर्व देव को पता चल जाए, कोई अवधि ज्ञानी को पता भी चल जाए, तो वो क्या उसको डिक्लेयर करेंगे, अरे अभी इसको नमस्कार नहीं करना जी, पहले में आ गया है जी पहले। फिर वो 2 सेकंड बाद फिर ऊपर, हाँ हाँ अभी कर सकते हो, अभी ऊपर चढ़ गया, ऐसा होता है। कि दूसरों का मूल्यांकन क्रिया से करना, अच्छी क्रियाओं की प्रशंसा करना, अनुमोदना करना, प्रचार करना। ख्याल में मक्खन पालिस की बात नहीं है, हृदय से अनुमोदना का भाव आता है। लेकिन खुद का मूल्यांकन क्रिया से नहीं करना। मूल्यांकन माने अपना वैल्यूएशन, हम मोक्ष मार्ग में हैं कि नहीं। तो हमने 10 उपास कर लिए, कि 10 एकासन कर लिए, कि हरी छोड़ दी, कि हमने ऐसा कर लिया। ये अपने मन लगाना ये फार्मूला, कि क्रिया से धर्म नहीं होता। दूसरा करे तो शाबाश, बहुत अच्छा, धर्मात्मा है, है? जो कमी हो तो भैया उपास किया ये तो बहुत अच्छा, लेकिन अभी 4 घंटा स्वाध्याय करना, खाली क्या करोगे आखिर, है? तो उसको प्रेरणा करना। लेकिन खुद को ये सोचना कि वो उपवास के काल में हमारे परिणाम कैसे हुए, उसके आधार पे अपने को धर्मात्मा है कि पुण्य आत्मा है कि क्या है, उसके आधार पे मानना। ये समझ लीजिए तरीका है अपने आप को देखने का। तो एक बात हुई, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि छे, यानी क्रिया में खलल नहीं पड़ना चाहिए, क्रिया भंग नहीं होना चाहिए। अब कहने को तो बहुत सी बातें हैं, विचार तो बहुत आते हैं, हैं कि ऐसा ही होना, यही चीज होना, ये नहीं होना। ऐसा कितना जीव को, किसी को किसी व्यक्ति का आग्रह, किसी को किसी पूजा का आग्रह, किसी को किसी स्तुति का आग्रह, किसी को कोई चीज का आग्रह, वो उससे ही बंधा हुआ है। जो कल मैंने कहा था कि क्यों ये विचार ही नहीं करता है, तो ये किसी से भी बंधने का अपने यहां कितना बढ़िया है। 24 तीर्थंकर, पंच परमेश थी, 20 तीर्थंकर, समझ में आया। सीमंदरादि विद्वान 20 तीर्थंकर भगवान, ऋषभवादी 24 तीर्थंकर भगवान, पर समय सार आदि समस्त जिनवाणी। बोलो आप, किसी को पर्टिकुलर अपने साथ हाईलाइट करते हैं? सब अपने सामान्य में सारे विशेष गर्भित हैं। तो इस तरह से ये क्रिया पर दृष्टि है, यानी क्रिया में संतुष्ट है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। अभी सवाल है, परिणाम सुधरना किसे कहना और बिगड़ना किसे कहना, ये सवाल है। ये उसमें अलग अलग चैप्टर बना के ये लिखे हुए, अलग अलग चैप्टर बना के। सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो जो परिणाम बंध का कारण है वो बिगड़ा हुआ परिणाम, जो परिणाम मुक्ति का कारण है वो सुधरा हुआ परिणाम। पर दबवाओ दुख गई, स्व दबवाओ सुख गई। संवर निर्जरा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सुधरा हुआ परिणाम, स्वसन्मुख परिणाम, आत्मा में जोड़ा हुआ परिणाम। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र राग द्वेष पुण्य पाप, ये बिगड़ा हुआ परिणाम। ख्याल में आया? परंतु यहां पर वो विवक्षा नहीं है। सिद्धांत में तो यही अर्थ है, यहां थोड़ा एक विशिष्ट प्रकरण वाला अर्थ ये है कि जैसी क्रिया है वैसा परिणाम होना। चारित्र की, धर्म की, व्यवहार धर्म की जो क्रिया है, आपके भाव वैसे हैं कि नहीं, दान देते समय जिस काम के लिए दान दिया जा रहा है उसकी अनुमोदना होवे। वो 16 करण पूजा में आता है, दान देय मन हरख विशेख है, ए भव जस पर भव सुख देख है। दान दे हर्ष भाव से, अरे इतना बढ़िया काम, धन्य है ये जीव ये काम कर रहे हैं, भैया मेरा अगर वैसा उदय होता तो मैं ही करा देता, लेकिन फूल नहीं, फूल की पांखड़ी सही, आपको मान लो 5 लाख का बजट है तो 5,000 सही, लेकिन मेरा कुछ तो योगदान हो। हर्ष से, अनुमोदना से। व्रत उपवास किया है तो विषय कषाय आहारो त्यागो यत्र विधीयते, हैं थोड़ा विषय कषाय की न्यूनता रहे, उस दिन टीवी बंद रहे, उस दिन इंटरनेट बंद रहे, हो सके तो मोबाइल भी बंद रहे, समझ में आया ना। उस दिन स्वाध्याय थोड़ा ज्यादा करे, प्रवचन एक ज्यादा सुने। ये खाने पीने से निवृत्ति ली है तो अन्य लौकिक कार्यों से भी तो निवृत्ति लेना चाहिए ना, उसी के लिए तो ये निवृत्ति ली जाती। कभी कभी आपने देखा होगा कि गुरुदेव अपने लाइफ के बारे में बताते हैं कि जब उनको समय सार मिला और उसका स्वाध्याय का उन्हें रंग चढ़ा तो वो लौकिक प्रवृत्ति कितनी, एक समय आहार और एक समय जंगल जाना, ऐसा बोलते थे। हैं जंगल जाना मने निवृत्ति के लिए, ख्याल में आया? भोजन एक समय और शरीर शौच क्रिया के लिए एक समय, बाकी सारा दिन जिस खड्डे में से सैकड़ों गाड़ी रेत निकल चुकी है, ऐसे गहरे खड्डे में जाके बैठ करके वहां जगह ढूंढ के वहां वाचन करते थे। वो तो गड्ढे में जाने की क्या जरूरत है, जमीन पर ही करें तो, उपाश्रय में करें तो, नो डिस्टर्बेंस। ये एकांत क्यों चाहिए? हमारे कारण किसी को डिस्टर्ब नहीं होना और दूसरा कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करे। कभी इस प्रसंग में एक बात याद आती है, कभी कभी आप समेत शिखर गिरनार वगैरह की यात्रा करते होंगे तो कोई कोई सहयात्री हंसी मजाक में ऐसा बोलते हैं, भगवान ने भी यार सोचा नहीं इतनी ऊपर जाके तपस्या करी है, वहां से मोक्ष गए, ये नहीं विचार किया कि बाद में हमारे भगत लोग आएंगे वो सब हीन पुण्य वाले, हीन संन वाले होंगे, उनको कितनी तकलीफ होगी। ऐसे लोग आपस में भगवान के बारे में सलाह देते, भगवान को आगे कोई भगवान होवे तो उसको सोचना चाहिए कि वो ग्राउंड फ्लोर पर ही तपस्या करे, वो ऊपर टॉप फ्लोर पर नहीं जावे पहाड़ में। तो मुझे विचार आया कि ऐसा क्यों करते हैं मुनिराज, जो उत्तम सहनन के धारी होते हैं और जो जिन कल्पी होते हैं, ऐसे सब नहीं होते, कोई कोई विशेष सहनन वाले होते, जानबूझ के ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, चातुर्मास तरु तल ठाणे, शीत मास दरिया के किनारे, क्यों? वहां कोई दूसरा जाएगा ही नहीं, वो ऊपर की टोंक पे, पांचवीं टोंक पे उस जमाने में समझ लो एक पक्षी भी नहीं जाने वाला था, है कोई नहीं जाने वाला था। हमारे कारण किसी को डिस्टर्ब नहीं और किसी के कारण हमको डिस्टर्ब नहीं, तो एकांत में जाकर के वो गुरुदेव स्वाध्याय करते थे। तो ये बात किस प्रसंग में आई? इधर निवृत्ति के प्रसंग में। उपवास किया है तो धंधा चालू है, व्यापार चालू है, बिजनेस चालू है। और आजकल तो धंधे पानी के लिए दुकान पे भी बैठने की जरूरत नहीं है, अभी तो फोन पे और इंटरनेट पे और उस पे सब चालू रहता है, कहीं जाने आने की भी जरूरत नहीं। तो खाली भोजन नहीं किया बस, तो कहते परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं। ऐसा हमारी बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम संस्कार के कारण, आदत के कारण, रूटीन के कारण, भक्ति की, दया की, दान की, व्रत की इत्यादि करते हैं। वो समय हमारा परिणाम उसके लायक रहता है कि नहीं रहता है ये भी विचार नहीं करते। पूजाओं में बहुत होता है, यहां तो बहुत ज्यादा समझ लीजिए शुद्धता और पवित्रता है। ख्याल में आने, एक तो आपके यहाँ ये सुविधा भी है कि आवाज तेज नहीं होती वो समझ लो एक परिस्थिति वैसी है। दूसरे आप कोई ढोलक वोलक नहीं रखते हो, कीबोर्ड नहीं रखते हो, डिस्टरबेंस करने वाली कोई चीज नहीं, सिवाय पूजा के गायन की पंक्तियों के कोई और उपयोग को आलंबन देने वाली चीज आपने नहीं रखी। ये सबसे बड़ा अभिनंदनीय कार्य है वास्तव में, और काफी हद तक देवलाली में भी इसी शैली में चलता। हमने भी जब से वहां विधान में कमान संभाली, ये वाद्य यंत्र वालों को भगा दिया, वो तो मेरे से नाराज हो जाते। मैं कहते नहीं नहीं धीरे बजाना, धीरे, हमारी आवाज तेज होना, तुम्हारी आवाज कम होना, उसको बुरा लगता बेचारे को है? तो अभी कोई आते ही नहीं है, वो आते ही नहीं, बुलाते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे जैसे यहाँ पे बोलते ना वैसे सब भाई बहन एक सुर में एक साथ, आवाज थोड़ी और ज्यादा कंफर्टेबल रहती है तो वो उस हिसाब से सब करते। लेकिन दूसरी जगह तो बिना हल्ले के, बिना कीबोर्ड के, बिना वो कांगो के, बिना तबले के, बिना उसके चले ही नहीं इसके। और फिर वो ये वाली धुन लेना कि वो वाली धुन लेना, बीच में भक्ति में ये गाना लेना कि वो गाना लेना, और इस धुन के बजाय दूसरी धुन ले ली तो मूड बिगड़ गया, फिर परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं। अपने आप पता नहीं गुरुदेव के प्रताप से इतनी समझ लो व्यवहार में शुद्धि आ गई कि मैं समझता हूं इसका अच्छा विश्लेषण करके अपने को इसको मेंटेन करना चाहिए, अपने आगे की पीढ़ी के लिए भी ये अपने को गाइडेंस देनी चाहिए कि भाई ऐसे ही करना। ख्याल में आए ना, ज्यादा वो ताम झाम में ज्यादा वो उसमें नहीं पड़ना। और अन्यथा कई अपने मुमुक्ष समाज में जैसे कोई बड़ा फंक्शन हुआ, बड़ा पंडाल लगाया, फिर उसमें बड़ा संगीत हो रहा है, फिर नृत्य हो रहा है चमर लेकर के, अब वो नृत्य में बड़ी परेशानी, समझते हैं क्या परेशानी है? कि वो सामने वाला डिमांड करता है कि फास्ट वाला गीत लो ताकि हमको नृत्य करने में मजा आवे, स्लो में तो मजा नहीं आवे, पैर ही नहीं उठे तो संगीत के साथ मेल बिठाना। भाई साहब जो पूजा चल रही है उसमें नृत्य की जरूरत है भी कि नहीं है ये कोई नहीं देखता। जैसे मान लीजिए आप युगल जी वाली पूजा कर रहे हैं, हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन, इसमें नाचने की गुंजाइश है एक सही घटना ऐसी हुई, मैं तो भाईंदर वालों के सामने ही कहा था, वस्त्रापुर में पंच कल्याणक था, वस्त्रापुर में अभी प्रसंग कौन सा था, वो नेमीनाथ का तप कल्याणक का प्रसंग था। तो तप कल्याणक में तो बारात आती है, और जब तक बारात आएगी मंच पे क्या होगा, तो राजुल की विवाह की चर्चा के लिए उग्रसेन महाराजा का दरबार लगता है। ख्याल में आया? तो उग्रसेन महाराजा के दरबार में सब राजा लोग बैठते हैं और चर्चा होती है कि भाई फलाने देश का राजकुमार अच्छा है, उन्हें नहीं नहीं उसमें ये कमी है, ऐसे सब वर कैसा होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, इसकी चर्चा करके। और जब फोन आ जाता है कि अब हम गेट पे आ गए हैं, तब इधर नेमीनाथ का प्रपोजल रखा जाता है, है? तो ये सब उग्रसेन के दरबार के लोग जो थे ये भयंदर वाले बने हुए थे। अभी आए मेरे पास कि साहब हमको एक दिन का चांस मिला है, हमें तो नृत्य करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं उनसे बोलूं कि भैया इसमें कोई मौका ही नहीं है, इसमें कोई अवसर नहीं है। उनका वो आप जानो, लेकिन हमें तो नृत्य करना है। और हमारे जो पंडित उत्तम चंद जी साहब हैं, आपने सुना होगा उनको, वो हर प्रवचन में नृत्य की घोर कटाई करते हैं। बिल्कुल जैसे गुरुदेव मिथ्यात की ऊपर प्रहार करते हैं, वैसे वो नृत्य के ऊपर बहुत, मतलब क्योंकि लोग उसमें पागल हो जाते हैं, कोई उचित अनुचित देखते नहीं, प्रसंग अप्रसंग देखते नहीं, उसमें ही संतुष्ट हो जाते, तो वो डोज ज्यादा देते। अब वो मंच पे बैठे थे मैंने कहा क्या किया जाए, वैसे प्रसंगानुसार नृत्य हो तो भी ये खाल खींच लेते हैं, और अगर ये अप्रसंगानुसार होगा तो मुझे क्या दंड भोगना पड़ेगा। बहुत प्रेम है गुरुदेव के साथ में। एक साल हम तीनों, मैं, उत्तम चंद जी और हेमचंद जी, डेढ़ महीने सोनगढ़ रहे थे 69 में, तब से समझ लो बहुत उनका वात्सल्य मेरे ऊपर है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा इनको पहले साध लो इनका भाई साहब ये सब भयंदर वाले मुमुक्षु लोग हैं और इनकी बहुत भावना है और ये आज के प्रसंग में नृत्य करना चाहते, और जबकि आज कोई डिमांड है नहीं नृत्य करने का, ऐसा कोई प्रसंग है ही नहीं, तो तुम तो नचाओ। उनको अरे यार धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, खुश हो गया वे। फिर मैंने समझ लो प्रसंग अनुसार फिट करके गीत गा करके जो भी है, और उनको मैंने ऐसा थोड़ा ब्लैकमेल भी किया, मैंने कहा आपको छिंदवाड़ा के लिए 1,00,000 रुपए देना पड़ेगा, बोले हाँ वो भी मंजूर है, बोलो आप तो उत्साह जीव को आता है, लेकिन उत्साह का प्रसंग तो देखे, कहीं कहीं तो इतनी विकृति हो जाती है कि एक जगह भक्ति हो रही थी और एक जो भक्ति गाने वाला है वो गा रहा था, हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां, मतलब समझ गए होंगे आप, जिन वाणी की बात नहीं मानी इसलिए हम चार गति में घूम रहे हैं। फिर बाद में नरकों में बहु दुख उठाए पशु बन करके डंडे खाए, अब वो गाने वाला वो गान विद्या का क्या बोलते हैं मास्टर, तो छेद डंडे खाए डंडे खाए, इतने में एक लड़का चमर लेकर के नाचने लगा क्यों भाई क्या हुआ, पशु बन के डंडे खाए इसमें तुमको मजा आ रही है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं। मैंने थोड़ा हास्य रस में ढाल करके ये बातें कही हैं, परम सत्य है। बहुत सोचनीय स्थिति अपन लोगों की भी, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, जिनको स्वाध्याय नहीं है, उनकी तो अपन क्यों बात करें, अपने एजेंडे पे उनका केस क्यों लेवें हैं, लेकिन अपन लोगों की भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि प्रसंग होए चाहे नहीं हो, क्रिया कुछ हो रही है, परिणाम कुछ हो रहा है, परिणाम अच्छे हो रहे हैं, क्रिया के अनुकूल हैं कि नहीं है, कोई विचार विवेक नहीं करता, परिणाम सुधारवा बगड़वानो विचार नथी। अभी और आगे, परिणामों नो पण विचार थाय तो जीवो पोतानो परिणाम थतो देखे तेनाज ऊपर दृष्टि रहे छे। कोई कोई समझदार लोग, चिंतनशील लोग होते हैं तो वो इस बात का विचार भी करते, या अपने यहां तो ठीक है, कई जगह भी जैसे अन्य मतों में भी उनकी पूजा में उनकी भक्ति में जो विकृतियां बहुत बढ़ गईं, तो उसकी टीका टिप्पणी अखबारों में आती है, कैसे जैसे एक बार साईं बाबा को क्या बोलते हैं, किसी ने सोने का सिंहासन बना के उधर रखा तो उसकी बड़ी आलोचना हुई कि जो आदमी सारी जिंदगी एक फकीरी वाला जीवन जिया, जिसने कभी कोई समझ लो ऐसा श्रृंगार व्रृंगार का जिसकी लाइफ में नहीं था, बहुत सादा जीवन था, अब तुम उसको सोने का मुकुट और सोने का हार पहना रहे हो, ये कहां के विवेक की बात। तो मैंने लेख पढ़ा तो मैंने कहा यार इन लोगों में भी ऐसे लोग तो होते ही हैं। ऐसे एक बार मुंबई में 10 लक्षण में था किसी प्रसंग में, और यहां तो आप जानते हैं वो अपने गणेश उत्सव का बहुत वो ही सीजन रहता है, वो ही अपने 10 लक्षण का वो ही उधर का, तो अखबार में लेख आया आजकल धर्म के नाम पर समझ लो दिखावा बहुत होता है, फालतू का खर्चा बहुत होता है, फालतू की लाइट बहुत जलाते हैं, और अब तो जब से ये टीवी का ये आ गया ना, क्या बोलते हैं, केबल वेबल, तो वो कम हो गया। नहीं तो पहले तो दो दो पिक्चर दिखाई जा रही है उधर पे, गणेश जी के समझ लो जो पंडाल है उसमें पिक्चरें दिखाई जा रही हैं। जब भीड़ बढ़ेगी, भीड़ आएगी तो चढ़ावा आएगा। समझ में आया ना? तो इन बातों की आलोचना उनके लोगों ने भी की, ये मेरे कहने का मतलब। तो चिंतनशील लोग तो सब समाज में होते ही हैं। तो परिणाम देखो, परिणामों पण विचार थाए। कभी कभी अपना परिणाम चला गया तो अपने को ऐसा लगता कि यार अपने को थोड़ी देर के लिए वैसा परिणाम हो गया, वो ठीक बात नहीं है। ऐसा कभी अच्छे विशुद्ध परिणाम हो गए, भक्ति में मन अच्छा लगे, पूजा में मन अच्छा लगे, तत्व समझ में आवे, भाव समझ में आवे, तो अपने को ऐसा आज बड़ा मजा आया, बहुत अच्छे भाव हुए, बहुत अच्छा लगा, ऐसे भाव होते। तो परिणामों नो पण विचार थाए, यानी परिणामों के बारे में जीव सोचता है कि हमारे परिणाम कैसे हुए। तो पण तो जेवो पोतानो परिणाम थतो देखे तेनाज ऊपर दृष्टि रहे छे, परंतु ते परिणामों नी परंपरा विचारता अभिप्राय मां जे वासना छे तेनो विचार करतो नथी। तो अभी अपन क्रिया और परिणाम से एक नेक्स्ट स्टेप जो है, जिसको मैं पर्दे वाली भाषा में बोलता हूं, नाटक में तीन पर्दे होते हैं ना, तो वैसे अपनी लाइफ में पहला पर्दा क्रिया, दूसरा पर्दा परिणाम, तीसरा पर्दा अभिप्राय, ऐसे तीन पर्दे का। तो क्या हुआ कि परिणाम जैसा अपना है उसमें संतुष्ट हो गया, शुभ परिणाम, कोई क्रिया में संतुष्ट था, इसने क्रिया को महत्व नहीं दिया, यानी मेरे तो भाव हैं, मुझे तो ये काम करना ही है, मुझे तो ये शास्त्र छपाना है, मुझे घर घर पहुंचाना है, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे शिविर लगाना है, ऐसा भाव की बात। और भाव हुए तो भाव में तृप्त हो गया, भाव में संतुष्ट हो गया। परंतु होना क्या चाहिए कि परिणामों नी परंपरा विचारता, इसका क्या मतलब, परिणामों की परंपरा का क्या मतलब, वो परिणाम क्यों हो रहा है, समझ में आया? ये देखो, मैंने अभी आपको बताया कि क्रिया तो स्थूल होती है, अपने को समझ में आती, दूसरे को समझ में आती, सबको पता चलती है हमने क्या किया, परिणाम उससे सूक्ष्म होता है। लेकिन अभिप्राय नाम की भी कोई चीज होती है, इसकी तो जगत को खबर ही नहीं है। तो हमारे वेदन में नहीं आता कि हमारा अभिप्राय कैसा है, ये तो समझ लो महासदभाग्य है जो 45 वर्षों तक धारावाह अखंड पने गुरुदेव ने पूरी सामर्थ्य से, पूरा पौरुष लगा के, पूरा उनका जो वैभव अंदर बाहर का, पूरे अपने प्रचंड प्रताप से ये अभिप्राय की बात कही, समझ की बात, मिथ्यात्व की बात, विपरीत मान्यता की बात, तेरो अभिप्राय खोटो छे, मान्यता खोटी है, सच्चा अभिप्राय कैसा होना चाहिए, खोटा अभिप्राय क्या है, सात तत्व संबंधी भूल क्या है, ये सब बातें अपने को बड़े भाग से सुनने मिल गई। इसलिए कभी कभी वो गुरुदेव खुद बोलते हैं कि आ बात काने पड़े ए पण महाभाग्यशाली छे, क्योंकि अभिप्राय पलटने की, दृष्टि पलटने की, धर्म की शुरुआत करने की, ये जगत तो क्रिया में धर्म मान रहा है, वो तो धर्म कर ही रहा है, उसको शुरुआत की जरूरत क्या है, उसकी तो गाड़ी धर्म पे ही चल रही है, क्यों क्यों कोई सोचेगा आकर। ये तो अपने को उन्होंने समझ लो सोते में से जगाया गया, भाई साहब धर्म वर्म कुछ नहीं हो रहा है, धोखे में नहीं रहना, ये तो शुभ परिणाम है, ऐसे अनंत बार हुए, अगर इससे मुक्ति हो गई होती तो अभी तक तुम भी वहीं ऊपर सिद्धों के बीच में होते, तो भूल कहां रह गई, तो ये सब तो उन्होंने बताया है कि नहीं। तो अपन पता कैसे चले करें कि हमारा अभिप्राय कैसा है, इसका हमको ज्ञान कैसे होए, कैसे पता चले, उसका ये उपाय है परिणामोनी परंपरा। परंपरा माने जो भी भाव हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये क्यों हो रहे हैं, फिर बाद में उसमें भी जो जवाब आवे उसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ, जितनी आपको हिम्मत होवे जवाब खोजने की, दो चार बार आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो परिणामों की परंपरा में से अभिप्राय निकल आएगा। वो तल में छुपी हुई चीज है, तल में छुपी हुई चीज है। मैंने उसमें उदाहरण लिखा है पुस्तक में। एक उसको पूछा, एक लड़का समझ लो 20-25 वर्ष का, रोजाना अभिषेक के समय आवे और बिल्कुल धोती दुपट्टा पहन के, शुद्ध वस्त्र पहन के बराबर अभिषेक करे, पूजन करे, फिर बाद में जाओ। मेरे जैसे किसी आदमी ने बात किया, ये इतनी उम्र में बताओ इतना टाइम निकाल लेता है और रोजाना आता है। एक बार उसका इंटरव्यू लिया समझ लो, उससे पूछा कि कब से आते हो तुम, और साहब मैं तो 10 साल से रोजाना आता हूं। तो क्यों आते हो? अभिषेक करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, क्यों करते हो? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो। समझ में आया ना? अभी आज सोच लो, विचार कर लो। जैसे तो हम पूजा करते तो हैं, मगर क्यों करते हैं ये तो हमने सोचने की जरूरत ही नहीं समझी। गजब हो गया। तो मैंने कहा बताओ तो आखिर तुम कब से आदत पड़ी, कैसे पड़ी, क्यों आते हो? बोले देखो साहब, अभी कितने प्रकार के जवाब आएंगे उसकी कल्पना अपन करते। हम बहुत छोटी उम्र में, हमारे पिताजी की भी नियम था पूजा करने का, वो आते थे, हमारी उंगली पकड़ करके हमको ले आते थे। उनने एक धोती दुपट्टा हमको पहना दिया था, छोटा सा हमारे लिए ले दिया था, तो हमको बड़ा मजा आता था धोती दुपट्टा पहन के भगवान जी को छूने में, भगवान जी को छूने में। तो तब से हमारे संस्कार पड़ गए अभिषेक पूजन के, इसलिए हम डेली करने लगे। एक परिणामों की परंपरा, समझ में आया? किसी ने ऐसा जवाब दिया कि भैया हमारे पिताजी जो थे अंतिम समय में हमको वचन लेके गए हैं हमसे कि देखो ये मंदिर जो है ये अपने दादाजी का बनवाया हुआ है, ये अपने पूर्वजों का बनाया हुआ है, इसमें जो मूल नायक भगवान हैं वो हम अपने घर के हैं, तुमने दान दे दिया अभी भी वो भगवान तुम्हारे घर के ही हैं। ऐसा इतना आग्रह रहता है, इतना आग्रह रहता है। इसलिए तो मैं कहता हूं गुरुदेव ने अपन को कहां कहां से बचाया इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अपने ही यहां के बाहर देखो, अन्य मुमुक्षु भाइयों में मान लो किसी ने मूल नायक की प्रतिमा का वो लिया, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, है? हाँ, चढ़ावा लिया और उनके फैमिली ने वो रखी प्रतिमा जी। अभी एक साल बाद उसका वार्षिकोत्सव मनाया तो अभिषेक भी रखा, तो उसके अभिषेक की पहली बोली हमको ही लेना है, बाजू वाले की नहीं लेना है। क्यों है ऐसा? सोचो आप, क्या हमारे भगवान है, वो हमारा अपनापन अभी तक उसमें बैठा हुआ है, ये उचित है कि नहीं, ये विचार करो। अरे देव शास्त्र गुरु, क्या बोलते हैं वो, देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने कि अगर ए बाजू की प्रतिमा है तो उसके कोने में खड़े होकर ही पूजा करने के भाव लगते हैं उनके। ए बाजू वाली प्रतिमा में किसी दिन खड़े हो जाए तो उसके पूजा में मन ही नहीं लगे। गजब हो गया भाई। देखो बहुत अपने परिणामों के बारे में सोचने की बात है। तो उस लड़के ने ये जवाब दिया, क्या जवाब दिया, कि हमारे पिताजी ये नियम दिला गए थे कि ये अपने पूर्वजों का मंदिर है, इसलिए अभी दादाजी ने इसकी अभिषेक पूजन करी, फिर हमने करी, अब तुम्हारी ड्यूटी है और तुम अपने बच्चों को संभला के जाना। तो पिताजी ने नियम दिला दिया था इसलिए करते, भगवान तो गायब। अभिषेक का जो भाव है, उसकी जो थीम है, उसका जो पूजन का जो स्वरूप है, वो तो कुछ नहीं, अपने थाली वगैरह सब तैयार वैयार मिल गई, इधर का इधर चला दिया, इधर का इधर ट्रांसफर कर दिया, जय जय नाथ परम गुरु हुए, थोड़ा मंत्र बोल लिया तो हो गया काम। अपन को सोचना चाहिए कि हम तो यहां नहीं बैठे हैं, इसमें हम तो फिट नहीं होते कहीं, ऐसा विचार करना भाई है। किसी और से पूछा कि भाई तुम क्यों, उसने भी इसी टाइप का जवाब दिया कि गांव में एक मुनिराज आए थे, उनने कहा था कि तुम पूजा का नियम लो तो हम आहार लेंगे तुम्हारे हाथ, तुम्हारे घर में, नहीं तो नहीं लेंगे। अब कोई तैयार ही नहीं, हमको सुबह नौकरी पे जाना पड़ता, कोई ऑफिस में जाना पड़ता, हम ही थोड़ा फ्री थे उस समय। लोगों ने कहा यार तुम इज्जत रख लो, तुम नियम ले लो, तो हमने ले लिया, तब से हम करने लगे। मतलब क्यों के जवाब में से कितनी परिस्थितियां खड़ी होती, कोई ये जवाब नहीं मिलेगा आपको सिवाय जो आत्मार्थी होगा उसके अलावा, कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हमें भी ऐसा वितरागता प्रकट करना है, हमें पूर्ण सुखी होना है, तो हमारा दिन मंगलमय हो। ख्याल में वो कह रहे ना, देव शास्त्र गुरु मंगलमय हो, तो उनके दर्शन से, उनके पूजन से, सवेरे से चाय है, नाश्ता है, अखबार है, टीवी है, ये सब कसाई की तीव्रता वाले काम है। ये तो दिन भर, इसके लिए तो दिन भर पड़ा है, कम से कम मांगलिक कार्यों से, वितराग देव के समझ लो स्मरण से, वितराग देव के चिंतन मनन से, उनके दर्शन से हमारा दिन शुरू होवे, तो उतना तो हम पापों से बचे, और उसमें जो एनर्जी, उसमें जो ऊर्जा लेकर के हम जाते हैं वितराग देव के दर्शन पूजन स्वाध्याय से, तो दिन भर उसकी खुमारी बनी रहती है। देखो स्वाध्याय का इसमें ज्यादा महत्व है। कभी कभी मैं ये उदाहरण देता हूं कि भोजन अपन दिन भर में टोटल किया जाए तो कितनी देर करते हैं, आधा घंटा, पौन घंटा, चार टाइम करता होगा तो एक घंटा, समझ में आया, नाश्ता है, खाना है, ये है वो, लेकिन वो एक घंटे का भोजन 24 घंटे की ऊर्जा दे देता है। 24 घंटे खाना नहीं पड़ता, और जो खाए उसकी तो क्या दशा होगी, समझ में आया ना है। ऐसे ये एक घंटे का ये देव शास्त्र गुरु का समागम, तत्व का चिंतन मनन, और उसमें ऐसी मंगलवाणी का श्रवण, तो वो आपको इतनी ऊर्जा दे देगा कि आप जो भी विषय कषाय के प्रसंग में जाओगे, ये समझ लो आप विषय कषाय के ज्वाला जल रही है ऐसी जगह जा रहे हैं अपन, मंदिर से बाहर निकले तो वहां आप अपने आप को, अपने चत्व चिंतन को, अपने आत्मा को, वेद ज्ञान को सुरक्षित रख सकें, इतना आपको खुराक उससे मिल जाती, ये उसका महत्व है। तो हमें वितरागी देव गुरु का समागम करना है, या प्रक्षाल पाठ आपने जिनेन्द्र रचना में एक मेरा लिखा हुआ है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, हमारे रजनी भाई को तो बहुत पसंद है वो परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिंब, ख्याल में आए ना, उसमें बिल भाव प्रधान छंद इसी आशय के बनाए हुए कि मैं क्यों समझ लीजिए अभिषेक करता हूं, प्रभु आपके बहाने मैं अपने पापों का प्रक्षालन करने आया हूं, अब उसका आपका स्पर्श करने से ऐसा लगता है मैंने अतिंद्री ज्ञान का, अतिंद्री आनंद का, अतिंद्री सुख का, अमूर्तिक भगवान आत्मा का स्पर्श कर रहा हूं, ऐसी फीलिंग होती। तो इसके लिए तो कोई जवाब आया नहीं, और सब ये परिणामों की परंपरा में किसी ने ये जवाब दिया, और कोई महापुरुष होगा तो ऐसा बोलेगा, उनने कहा था कि इस मंदिर की बड़ी मान्यता है, यहां अगर आप पूजा करोगे तो सारी मनोकामना गारंटी से पूरी होगी, इसलिए आते हैं। ये तो और गजब हो गया। तो ये काय में से आया, जे वो पोतानो परिणाम थतो देखे, तेनाज ऊपर दृष्टि रहे छे, परंतु ते परिणामोनी परंपरा विचारता, अभी अभिप्राय मां जे वासना छे तेनो विचार करतो नथी। अभी अपन को अभिप्राय की वासना, इस शब्द पे विचार करना, अपने पास है अभी 5 मिनट, तो अभिप्राय का क्या मतलब है ये समझने की बात है। देखो क्रिया स्थूल तो होती है, लेकिन वो भी चेंज तो होती है, सदा एक सी नहीं होती, परिणाम उससे कई गुना स्पीड से बदलते हैं, लेकिन अभिप्राय जो है वो हर परिस्थिति में वो का वो ही रहता है। गजब है कि जैसे भगवान आत्मा ध्रुव है, वैसे ये जीव का अभिप्राय भी ध्रुव जैसा ही है। कोई कोई जीव तो ऐसे होते हैं कि अनादि अनंत काल में उनका अभिप्राय एक बार करवट लेता है बस, जैसे वो भरत चक्रवर्ती के पुत्रों की बात आती है, निगोद में थे, फिर एकाद दो इंद्र की पर्याय ली, फिर उसके बाद में चक्रवर्ती के यहां हो गए, 8 वर्ष तक बोले नहीं, मुख से वाणी नहीं निकली 8 वर्ष तक, तो चक्रवर्ती लेके गए उनको समूह शरण में, फिर पूछा प्रभु ये बालक क्यों नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने कहा अब भी बोलने वाले हैं, और सारे के सारे बोल पड़े, हे प्रभु हमें दीक्षा दीजिए, बोलो ऐसा आता है शास्त्रों में। फिर दीक्षा ले ली, उसी भव से मोक्ष चले गए। मतलब एक बार अभिप्राय पलटा, सम्यक दर्शन हुआ, फिर उससे गिरने का नाम नहीं। और छायक सम्यक हुआ केवली के पादमूल में, छपक श्रेणी आरोहण करके मोक्ष चले गए। अनादि अनंत काल में उनकी अभिप्राय माने श्रद्धा गुण की पर्याय, अभिप्राय माने प्रतीति, अभिप्राय माने श्रद्धान, वो एक बार पलटा। खैर वो तो एक सम्यक अभिप्राय की बात है, अपन अपनी लाइफ में देखें। एक व्यक्ति समझ लीजिए डॉक्टर है, सब लोग उसको डॉक्टर साहब बोलते हैं, और वो भी जब से प्रैक्टिस चालू की है तब से उसको यही फील होता है कि मैं डॉक्टर हूं। ठीक है, वो रिजर्वेशन का फॉर्म आता ना, उसमें लिखा है अगर आप डॉक्टर हो तो आप इसमें टिक मार्क कर देवे, तो बराबर नियम से करता है कि वो अपने को डॉक्टर मानता है। अब उसकी ये मान्यता कि मैं डॉक्टर हूं, ये कब खत्म हो जाती है? मंदिर भी जाता है, स्वाध्याय भी करता है, सिनेमा भी जाता है, क्लब में भी जाता है, बाल बच्चों के साथ बैठता है, खेलता भी है, मैच भी देखता है, यानी हजारों तरह की क्रियाएं होने पर भी और हजारों तरह के परिणाम होने पर भी उसके अंदर मैं डॉक्टर हूं ये मान्यता सोते जागते उठते बैठते कभी छूटती नहीं। इसका नाम है अभिप्राय, वो कभी बदलता नहीं। ख्याल में आया? ये जैसे ये नाटक सिनेमा में ये लोग सब करते हैं ना, तो तरह तरह के रोल करते हैं, कोई भिखारी बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, लेकिन जैसा वो बनता रोल करता है अपने को वैसा मानता नहीं है। देखो क्रिया और परिणाम की धारा अलग और अभिप्राय की धारा अलग, ये बताना है मुझे, ये पहचानने लायक बात है। अभी फिर अपन कल इसको ज्ञानी और अज्ञानी उन दोनों में लागू करेंगे। तो अपन एक समझ लो एक चार्ट बनाए कि पूजा करना, अभी उसमें तीनों में घटाओ इसको, क्रिया में, परिणाम में, अभिप्राय में। तो जो हाथ से कर रहे हैं, सामग्री चढ़ा रहे हैं वो, और मुख से मंत्र बोल रहे हैं अर्घम निरपाम ती स्वाहा, ये क्रिया हो गई। और उस समय जो अपने भाव हो रहे हैं, जो छंद पढ़ के या जो समझ लो अपने जो से भी परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम हो। अभिप्राय का क्या रोल है? मैं पूजा करता हूं, ये पूजा करने से मुझे धर्म होगा, ऐसी मान्यता ये अभिप्राय में पड़ी रहती। अज्ञानी के अभिप्राय की बात, ज्ञानी का अभिप्राय मैं तो ज्ञायक हूं और ये क्रिया सब परद्रव्य की पर में हो रही है, विकल्प की क्रिया विकल्प में हो रही है, मैं तो चैतन्य जाननहार हूं, ऐसा ज्ञातापने का अभिप्राय वो ज्ञानी का। क्रिया दोनों की एक सरी की, परिणाम भी दोनों के एक जैसे, समझ में आया? लेकिन अभिप्राय में ये फिर पड़ जाता है। तो वास्तव में ये जो परिणामों के भी तल में गहराई में ये जो मान्यता बैठी हुई है अभिप्राय की, ये समझने लायक बात है। कल अपन इस पे और विशेष चर्चा आगे बढ़ाएंगे, इसका समापन करेंगे, आज यहीं विराम लेते।